السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. الحمد لله، हम रमज़ान के महीने में कोशिशों में लगे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों के लिए तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, उनको धो डालें। और हम वो काम भी देख रहे हैं कि जिनके ज़रिए हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकते हैं और ज़्यादा नेकी कमा सकते हैं छोटे छोटे कामों से। इस उम्मत का एक खासा ये है कि इस उम्मत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर दुआएं की हैं, और आपकी दुआओं की बरकत से इस उम्मत को ये एजाज़ हासिल है कि छोटी सी जिंदगी में और थोड़े से काम करके भी वो बहुत बड़े बड़े अजर कमा सकते हैं। जैसे आप मसलन मुस्कुराहट ही देखें, इसको भी सदका करार दे दिया गया कि मुस्कुरा के किसी से मिल लो, वो भी सदका है। आप को ये बशारत दे दी गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कि आप अगर लोगों के साथ रहम का मामला करेंगे तो आसमान वाला आप पर मेहरबान हो जाएगा। तो जो भी ऐसी बशारतें हैं इस उम्मत के लिए ख़ास तौर पे रखी गई, इस तरह से वो थोड़े वक्त में बहुत कुछ कमाइयाँ कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं दूसरी उम्मतों से जिनकी ज़िंदगियाँ तो बहुत लंबी थी लेकिन उनके पास वो फ़ज़ाइल नहीं थे जो हमारे पास हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इमाम इब्नुल क़य्यिम ने फरमाया कि दीन सारा का सारा अख़लाक है, और अख़लाक पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा शख्स ना बताऊं जो जहन्नुम की आग पे हराम है और जहन्नुम की आग उस पर हराम है। ऐसा इंसान जो नरम खू हो, उसने अख़लाक रखने वाला हो और लोगों के करीब हो, यानी लोगों तक, लोगों को उस तक एक्सेस हासिल हो। ऐसा ना हो कि लोग बेचारे उससे उनको काम हो और वो भागते फिरें लेकिन वो उस तक पहुंच ही ना सकें। तो जो हुस्ने सलूक वाला और नरम खोई वाला हो, पोलाइट हो लोगों के साथ। यानी आप देखें कि अखलाक कितनी बड़ी एक नेकी है कि अगर आपका अखलाक अच्छा है तो आप जहन्नुम की आग से बच सकते हैं, बल्कि जहन्नुम की आग हराम हो जाएगी। इसी तरह बाज़ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, उनके अखलाक इस वजह से बुरे होते हैं कि वो गुस्से में इतने आपे से बाहर हो जाते हैं कि उनको यही नहीं पता चलता कि वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे भी बशारत दे दी कि जिसने अपने गुस्से पर काबू का पा लिया, अल्लाह ताला उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। देखिए सुभान अल्लाह, हम सब चाहते हैं कि हमारी पर्दापोशी क़यामत के दिन हो, क़यामत के दिन हमारे गुनाह एक्सपोज ना हो, तो अल्लाह ताला गुनाहों पे पर्दा डाल देगा अगर गुस्से पे काबू पा लिया। और फरमाया जिसने अपने गुस्से को पी लिया, हालांकि वो चाहता तो उसका इजहार कर सकता था, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसके दिल को खुशी से भर देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। यानी आप देखें कि जिसको अल्लाह ताला खुश कर दे तो फिर इमेजिन करें कि वो क्या नेमतें उसको देगा कि दिल खुश हो जाएगा उसका, और वो भी क़यामत के दिन। क़यामत के दिन तो इंसान का दिल सिर्फ इसी पे खुश होगा कि उसको जन्नत मिल जाए। तो वो बंदा जो कि यानी गुस्से को पी गया उस वक़्त जिस वक़्त वो इतनी ताकत रखता था कि चाहता तो गुस्से में कुछ भी कह सकता था, कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उससे आगे जो बंदा है वो कमज़ोर है या उसके अंडर है या वो कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता, तो इंसान ज़्यादा शेर हो जाता है ना कि ये अब क्या करेगा, मेरी अथॉरिटी है, अब तो मेरा हक बनता है कि मैं गुस्सा करूं, अब तो मेरा क्या करेगा ये। तो उसमें इंसान अपने आप को जब काबू कर लेता है, गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, पी जाता है, तो अल्लाह ताला इतनी बड़ी उसके लिए बशारत देता है अपने नबी की जुबान से कि उसको कयामत के दिन अल्लाह ताला खुश कर देगा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल करे कि जो लोग वाकई अपने गुस्से को इस तरह से काबू कर सकते हैं। तो इंसानों के साथ जो मामलात है ना, उनके साथ अखलाक है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफा मंद हो। तो लोगों के साथ जो अखलाक बरतना है, लोगों के साथ जो मामलात करने हैं, उनमें हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। वो हमारी नेकियों को बर्बाद भी कर सकते हैं और वो हमारी नेकियों को बढ़ा चढ़ा भी सकते हैं, बल्कि जन्नत तक पहुंचा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने एक आदमी को देखा, वो जन्नत में बड़े मज़े से घूम फिर रहा था, कलाबाजियां खा रहा था। तो उसकी नेकी क्या थी कि उसने रास्ते में से तकलीफ दे चीज को हटा दिया था। एक दरख्त था, उसको काट दिया, वो रास्ते में लोगों के आ रहा था जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचती थी। तो यानी इंसानों के साथ हुस्ने सलूक इंसान के लिए कितनी बशारतों का बायस बन जाता है कि उसकी वजह से उसको जन्नत मिल गई, उसकी वजह से वो वहां वो मकाम उसने पा लिया, जन्नत के मकामात उसको मिल गए। सुबहान अल्लाह। तो इसलिए इंसान इस चीज की हिरस रखे कि मैं किसी के काम आ जाऊं, मैं किसी के लिए फायदा मंद बन जाऊं। और बाज दफा किसी को फायदा पहुंचाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बल्कि हमारे हाथ में होता है, हमारी थोड़ी सी एक एफर्ट से, एक मिसाल के तौर पे एक फोन कॉल से, या किसी के साथ जाने से, या किसी के लिए थोड़ी सी बात कर देने से उस दूसरे का काम बन सकता है, उसकी कोई मुश्किल दूर हो सकती है, उसके लिए कुछ आसानियां पैदा हो सकती हैं, उसका मसला हल हो सकता है, वो एक परेशानी के अंदर है, उसकी कुछ परेशानी हल्की हो सकती है। लेकिन हम कहते हैं हम क्यों हिले, हम क्यों टसे मसों, हमें क्या। जब हम कहते थे ना हमें क्या, तो फिर तो जाहिर ही बात है हमने किसी की तकलीफ को समझा ही नहीं, और ना ही उसके लिए लीस्ट हम बौदर हुए। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो कि दूसरे के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। यानी आप जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते ना कि आप परेशानी में रहे, आप अपने लिए पसंद करते हैं मेरी कोई हेल्प कर दे, लेकिन जब दूसरे का मामला आए तो आप ये कहते हैं हमें क्या, तो फिर सोचें कि मोमिनों में से तो ना हो सके हम, और जन्नत में बुलंद मकाम पा सकते हैं। आपको पता है जन्नत में इतनी बुलंद मनाजिल हैं जिनका अंदर बाहर से और बाहर अंदर से भी नज़र आता है, और फिर बाला खाने हैं जन्नत के अंदर, जैसे आपको कहें पेंट हाउसेज हैं, और छोटे छोटे काम हैं जिनसे वो मिल सकते हैं, छोटे छोटे काम। एक देहाती ने पूछा था ये किसको मिलेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नरम बात करता है, यानी पोलाइट है, वो अपनी बात करने में ऐसी करख्तगी ना रखें, खासतौर पर उनके साथ जिनको आप सोचते हैं कि ये तो हमें क्या कहेंगे, ये तो हमारे अंडर ही हैं, तो इनके साथ बात करने तो बिल्कुल ही इंसान परवाह नहीं करता। मिसाल के तौर पर मेरे बच्चे हैं, बाज़ लोग तो बाज़ ख़वातीन अपने खामिंदों के साथ ऐसे बात करती हैं, अलग है उसकी भी मैं आपको अभी एक हदीस बताऊंगी, लेकिन पहले ये बात मुकम्मल हो जाए कि यानी नरम बात करना सिर्फ हमारे लिए उस वक्त होता है जब हमने कहीं अपनी अपना इम्प्रेशन अच्छा डालना हो, या कोई हमारे से कोई ऊंचा हो, कोई हमारे से बड़ा मर्तबे में हो, या किसी और चीज़ में हमसे ज़्यादा हो, जिसको हम ज़्यादा बड़ा समझते हैं, माल में हो, स्टेटस में हो, तो तब तो हम बहुत पोलाइट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे बराबर के, या हमें लगता है कि ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, चाहे मेरे से इल्म में कम है, चाहे मैं तो बहुत नेक हूँ और ये तो कोई नेक भी नहीं है, और या फिर इनके पास तो इतना पैसा नहीं है, या इनके इतना बड़ा घर नहीं है, या इसकी नौकरी तो बहुत छोटी सी है, तो वहाँ पे हम नरमी को भूल जाते हैं। जो अल्लाह की खातिर नरम बात करता है, ये नहीं कि अपने से ज़्यादा किसी भी चीज़ में बड़े से नरमी बात करना तो आसान है, बात यह कि ये तो हमारा अखलाक होना चाहिए, ये हमारा अखलाक पहचाना ही इसे जाए कि फलां बहुत पोलाइट है। ये नहीं कि हर एक के साथ ऐसे बात करेंगे टूट के पड़ जाए उसको, और रूड हो, हम हमारा बिहेवियर रूड हो, हमारी बात के अंदर तंज हो, या हमारी बात दूसरे को काट देने वाली हो, उसका दिल हर्ट कर देने वाली हो, वो नहीं होना चाहिए। हम इतने बॉसी हो जाएं, बाज़ ख़वातीन घर में इतनी बॉसी होती हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी औरतें हैं, मैं उनका ना तुम्हें बताऊं जो जन्नत की वारिस बनेंगी, तो साहबा ने पूछा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, हार औरत जो कसीरुल औलाद हो, बहुत सारे उसके बच्चे पैदा हों, और जो अपने खामिन से टूट के मोहब्बत करती हो, जब वो गुस्से में हो या उस पर ज्यादती की गई हो या उसका खामिन उससे नाराज हो जाए, तो फिर वो क्या करती है? वो कहे, ये मेरा हाथ आपके हाथ में है, मैं उस वक्त तक नींद नहीं लूंगी जब तक आप मुझसे राजी ना हो जाए। ऐसी औरत के लिए कहा गया कि वो जन्नत की वारिस होगी, और वो औरत भी जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपनी खामिंद की बात को सुने। अब ये नहीं कोई कहे कि देखे हमारा खामिंद तो ऐसा है, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास फिर ईमेल्स आने लगती हैं कि हमारे खामिंद ऐसा ऐसा है, फिर हम उसको कैसे राजी करें। उनको छोड़ देना आप, ये अनॉर्मल इंसानों की बात हो रही है। तो जो नॉर्मल घराने होते हैं उनके अंदर औरत को ऐसे ही होना चाहिए। हर जगह एक्सेप्शनल तो नहीं केसेस होते ना, तो जहाँ पे जालिम जाबिर कोई आदमी रहता है उसकी बात नहीं हो रही, नॉर्मल केसेस है तो। लेकिन एक औरत के ऊपर कितनी बड़ी ये कि उसके लिए कितनी बड़ी बशारत है ये, अगर वो अपने घर के अंदर अपने अखलाक को दुरुस्त करती है, अपने अखलाक पे वर्क करती है। और ये वर्क करने से होता है। देखिए कोई चीज़, बाज़ लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से नरम जुबान मिलती है और वो वैसे मतलब बचपन से ही इस तरह से होते हैं कि नरम बात करते हैं, लेकिन बास लोगों के ऐसा नहीं होता, उनको घर में भी ऐसा माहौल मिला होता है, चीखते चिल्लाते रहते हैं घर में भी, वो इसी तरह बच्चे सीख लेते हैं, उसी तरह वो ग्रो अप हो जाते हैं और फिर वो इसी तरह अपने घरों में करते हैं। तो अगर आपके लगता है कि आपकी ज़ुबान में सख्ती है तो वर्क करें इस पर, कितना इसके ऊपर अजर मिलेगा कि मैं अपनी जुबान को हर वक्त नोट करती रहूं कि मेरी जुबान से ऐसी तो नहीं बात निकल रही कि मैं रूड हो रही हूं, मैं बदतमीजी कर रही हूं, और मैं इस तरह लोगों के ऊपर बॉसी बन रही हूं, ऐसे तो नहीं मैं करती बात। तो चेक करें, और अगर आपको कोई कभी बता दे कि आप ऐसे करते हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, बजाय इससे कि इंसान जस्टिफिकेशन देने लगे, अब अपने आपको डिफेंड करने लगे, नहीं मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे नहीं। इससे बेहतर है कि इंसान अपने ऊपर वर्क करे। ये भी तो शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे ये बात किसी के जरिए पहुँचा दी और हम अपनी इसलाह कर सकते हैं। और जो इसलाह ही ना करना चाहे वो हर वक्त दूसरों को ही ब्लेम करता रहता है कि जी वो ही है ऐसे, मैं तो बहुत नरम हूँ, तो ये फिर सही बात नहीं है। तो जिन को ये बाला खाने मिलेंगे, जो नरम बात करते हैं, जो हमेशा रोजे रखते नहीं आते हैं, अक्सर रोजे रखे और रात को उठ के नमाज पढ़ते हैं जबकि सब लोग सो रहे होते हैं, यानी तहज्जुद की नमाज, तिरमिज़ी की रिवायत में है कि ये बाला खाने उनके लिए हैं जो नरम बात करते हैं, खाना खिलाते हैं, रोजे रखते हैं और रातों को तहज्जुद पढ़ते हैं। तो उसमें खाना खिलाने की बात भी आई है। खाना खिलाना कितना आसान है ना, और ख़ास तौर पे आजकल जब इफ्तार बना रहे हैं तो तब भी ख़वातीन को कितना अजर मिल सकता है अपने घर वालों को खाना खिलाने का। उसके ऊपर भी माइंड ना करें और मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है और सब मेरे ऊपर डाला हुआ है और मैं क्या करूं और ये मुसीबत और ऐसे नहीं, उसको खुशी से करें कि ये खाना खिलाना, चाहे मैं घर वालों को ही खिला रही हूँ, ये भी मेरे लिए कितनी बड़ी बशारत मिलने का सबब बन सकता है। और इसी तरह मसाकीन को खाना खिलाएं, आपके थोड़े से पैसे खर्च करने से बहुत सारे लोग खाना खा सकते हैं, तो इसमें ज़रूर हिस्सा डालें कि लोगों को इफ्तार करवाना है, कहीं पे सहरी करवानी है, और खाना खिलाने का शौक़ रखें कि मैं कहीं ना कहीं हर महीने खाना के लिए पैसे भेजूं कि लोग खाना खाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें साथ के, अल्लाह ताला मुझे, मैं इस नीयत से खाना खिलाती कि तू मुझे जन्नत के बाला खाने देना, और वो दिन जिस दिन बहुत भूख होगी है अल्लाह ताला, तो उस दिन मुझे उस भूख से महफूज रखना, क्योंकि आपको पता है कयामत के दिन इंसान जितना ज़्यादा इस दुनिया में खाता है ना, उतना ही ज़्यादा वो भूखा होगा और इतना प्यासा होगा जितना कभी उसको प्यास नहीं लगी होगी। तो कयामत के दिन ऐसा है कि भूख और प्यास अपनी एक्सट्रीम पे होगी, तो इंसान इस नीयत के साथ खिलाए कि अल्लाह आज मैं तेरे बंदों को खिलाती हूँ, तू मुझे उस दिन की भूख और प्यास से महफूज रखना। तो इस नीयत के साथ ये नेकियां करें और लोगों के लिए बस फायदा मंद बन जाएं कि मैं, मेरी जात से फायदा पहुंचे ही पहुंचे, किसी ना किसी को जरूर फायदा पहुंचे। तो देखें कि मैं किन लोगों के लिए फायदा मंद बन सकती हूँ। तो आज हम अपनी नमाज में देखेंगे, हम अभी तक कर चुके हैं सजदे की बात, रुकू की बात, और अपनी नमाज में किस तरह हम ज़्यादा खुशू ला सकते हैं। तो अब हम तशहुद पे पहुँचे हैं कि हम जब तशहुद में बैठेंगे तो आपने देखा वो बैठने की पोजीशन भी कैसी होती है, आपकी निगाहें अपनी ये शहादत की उंगली की तरफ होती हैं, आप बैठे होते हैं और आजी के साथ बैठे हुए हैं और जुबान से आपको क्या निकल रहा है, अत्तहियातुलिल्लाह। बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मुकालमा हुआ था मेराज पे, तो ये बहुत ज़यीफ़ हदीस है, ऐसा नहीं है ये, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाई थी ये कलिमात कि जब तुम नमाज में बैठो तो ये पढ़ो, तो ये नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम ने खुद सिखाए हैं। तो अत्तहियात का मतलब क्या, तहिया क्या होता है, तहिया असल में ग्रीटिंग को कहते हैं, कोई भी ग्रीटिंग, मतलब कोई कोई हेलो हाय करता है, कोई गुड मॉर्निंग करता है, कोई सलाम करता है, ये ग्रीटिंग जो होती है इसको तहिया कहते हैं। वैसे आपको ये मैं बता दूं कि सलाम करना भी कितनी बड़ी नेकी, हालांकि सलाम करने में भी कुछ हमारा जाता नहीं है, कुछ कुछ भी एफर्ट नहीं लगती, लेकिन सलाम करना भी इतनी बड़ी नेकी कि इंसान को उसकी वजह से भी अस्सलाम वालेकुम कहने पे भी 10 नेकियां मिल जाती हैं, वो रहमतुल्लाह ही 20 नेकियां मिल गई, वो बरकात हो 30 नेकियां मिल गई। इतना आसान ये नेकी करने का तरीका है, लेकिन उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए नेकियां कोई बड़ी चीज ही नहीं, हम उनको इतना हकीर समझते हैं। तो नेकी को हकीर ना जाने, हल्की से हल्की नेकी को भी समझे, ये भी कीमती है, हमने जमा जो करनी है, जिन्होंने कुछ पैसे जमा करने होते हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज से भी पैसे जमा करके यहाँ से बचाया यहाँ से बचाया कि उनके पैसे जमा हो जाए, और एक दिन वो काफी जमा कर लेते हैं। तो हम भी ये ना समझे 10 नेकियों से क्या होता है, 20 से क्या होता है, 30 से क्या होता है, नहीं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये सलाम करना ये भी अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है इस उम्मत के लिए, और सलाम अल्लाह ताला का नाम भी है, अस्सलाम अल्लाह ताला का नाम है, तो अल्लाह का जिक्र भी इसमें हो जाता है जब आप सलाम करते हैं किसी को। और फिर नंबर 2 ये दुआ भी है, जब आप सलाम करते हैं कि आपने अपने दोस्त को, साथी को, घर वालों को सलामती की दुआ दे दी कि आप सलामत रहें और आपके ऊपर अल्लाह अपनी रहमतें भेजे और बरकतें नाजिल करें, और जिसको सलाम किया आपने उसको ये भी खबर दे दी कि भाई तुम मेरे शर से महफूज हो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई शर नहीं पहुंचेगा, मैं सलामती का ही पैगाम लेकर आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो, एज लॉन्ग एज वो मुसलमान है। बल्कि एक हदीस में आता है आपने फरमाया, मैं तुम्हें बताऊं ना, जिस अमल से दर्जात की बुलंदी मिलती है, तो उन आमाल में एक सलाम करना भी है कि सलाम को आम करो। तो यहां पे बात हो रही थी अत्तहियात की, अत्तहियात के अंदर क्या है, तहिया यानी ग्रीटिंग, तहिया जिससे मुलाकात शुरू में जो आप मुलाकात के बात करते हैं, तो अत्तहियातुलिल्लाही का मतलब क्या कि मेरी जुबान से अदा की जाने वाली सारी इबादत, जितनी भी बातें थे या जुबान की, वो लिल्लाह अल्लाह के लिए है। अब जुबान से कौन कौन सी बातें होती हैं, आप ये तस्बीहात पढ़ रहे हैं, अज़कार कर रहे हैं, कलमा तैयबा का विर्द करते हैं, आप कुरान करीम पढ़ते हैं, आप दुआ करते हैं, ये भी इबादत है, दुआ भी आपको पता है, बल्कि मुखल इबादत है, इबादत की यानी मगज़ है इबादत का, असल इबादत ही दुआ है, तो ये भी सिर्फ अल्लाह के लिए। अब जब आपने ये कहती है ना अत्तहियातु लिल्लाह, तो ये आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, यानी मेरी जुबान से की जाने वाली सारी इबादत ना वो सिर्फ अल्लाह के लिए। वसलावातु और सलावात, तमाम वो इबादतें जो जिस्म से की जाती हैं, अब वो कौन सी हैं, नमाज है, रोज़ा भी आप अपने जिस्म से करते हैं, हज उम्रा करते हैं, तो वो सलावात हैं, वो भी क्या हैं, वो भी अल्लाह के लिए हैं सिर्फ, किसी और के लिए नहीं। वह तय्यिबात और तय्यिबात माली इबादत के लिए, तमाम इबादतें जो माल खर्च करने से की जाती हैं, चाहे वो सदका है, चाहे वो ज़कात है, कुर्बानी करना है, कुर्बानी में एफर्ट भी लगती है लेकिन पैसा भी लगता है, इस तरह हज उमरा जो है वो भी माली इबादत भी है और बदनी इबादत भी है। देखिए इबादत की ये तीन तीन ही किस्में हैं, या तो वो बदनी इबादत होगी, या माली इबादत होगी, या जुबान की होगी, ठीक है। अब जो माली इबादत हैं वो भी मेरी सारी अल्लाह के लिए है, तो ये तीनों किस्म की इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। अब इसके बाद जब आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि और किसी के लिए नहीं है, हर किस्म की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो अब इसका मतलब है कि इबादत की कोई भी किस्म हो, उसमें कोई शिर्क नहीं है। सारी ये मेरी इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, यानी अकीदा तौहीद। देखिए ना, आपने अकीदा तौहीद को एक तरह से दोबारा उसकी गवाही दे दी है, क्योंकि कोई अगर गैर अल्लाह के नाम का सजदा करता है तो उसने शिर्क किया। सजदा क्या है? ये बदनी इबादत है। फिर कि कोई अगर गैर अल्लाह के नाम की कुर्बानी करता है तो उसने भी शिर्क किया। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मेरी माली इबादत भी सिर्फ अल्लाह के लिए, मेरा हज भी अल्लाह के लिए, मेरा रोज़ा भी अल्लाह के लिए, मेरे उम्रा अल्लाह के लिए, मेरी नजरों नियाज अल्लाह के लिए। तो आपने नफी कर दी ना कि गैर अल्लाह के लिए तो कुछ भी इबादत नहीं है मेरी। तो आप फिर दुआ गैर अल्लाह से तो नहीं मांग सकते, वो चाहे कोई भी है, उसके आगे जाके आप नहीं मांग सकते कि फलां मुझे ये दे दे, गौसे आजम मुझे दे दें, या अली मेरी मदद कर, या रसूलुल्लाह मेरी मदद करें। इस तरह से नहीं कह सकते। फिर आप किसी कब्र पे जाके सजदे नहीं कर सकते कि मैं यहां जाऊंगी, यहां से मुझे मिलेगा ये सजदा, मैंने इसको किया। ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपने नमाज में कह दिया कि मेरी सारी इबादत अल्लाह के लिए। फिर रियाकारी भी नहीं कर सकते, वो तो इंसानों के लिए हो गया फिर, कि ये देख लें कि मैं कितना अच्छा नेकी का काम कर रही हूँ, वो भी ख़त्म हो गई। सोच लें फिर कि हम क्या कह रहे होते हैं जुबान से, जबकि हम ये कहते हैं कि मेरी सारी इबादत सिर्फ अल्लाह तेरे लिए, खालिस तेरे लिए। खुद ब खुद हमारा अमल फिर दुरुस्त होना शुरू हो जाता है। जहाँ रियाकारी होने लगेगी वहाँ पर हम सोच लें कि मैं तो नमाज में ये कहती हूँ और मैं लोगों के सामने शो ऑफ करके दिखा रही हूँ, तो मैंने तो ये तशहुद में डिक्लेयर कर दिया, अब मैं तो नहीं शो ऑफ कर सकती। तो हम खुद ब खुद रुके फिर उन चीजों से। हम तिलावत कुरान करते हुए लोगों को दिखा रहे हैं, देखो लोगों को पता चले मेरी आवाज कितनी खूबसूरत है, वो हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अब मेरी तो सारी इबादत जो कौली भी थी वो भी अल्लाह के लिए है। और मैं लोगों को बताऊं, जी मैं तो रोजे बहुत रखती हूँ, मैं तो इतने रोजे रखती हूँ, हर आए दिन ही मैं रोज़ा रखती रहती हूँ, मैं तो पीर और जुमेरात का भी रखती हूँ, मैं तो फलां भी करती हूँ, मैं तो ऐसे भी करती हूँ, मैं तहज्जुद के लिए उठती हूँ, मैं फलां। नहीं, आप शो ऑफ कर ही नहीं सकते, इसलिए कि शो ऑफ आप कैसे करेंगे, जबकि आपकी ये इबादत भी अल्लाह ताला के लिए है। आप रोज नमाज में ये कह रहे हैं, तो लिहाजा ये कह के हम अपनी तौहीद को दोबारा रिफ्रेश करते हैं, अकीदा तौहीद का। और फिर हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो आप पर ए नबी। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सलामती भेजते हैं, और इसलिए कि अल्लाह ताला के बाद जिसका सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, जो हमारे मोहसिन है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम उनके ऊपर सलाम भेजें। किसी भी मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए ना, तो हमें कम अज़ कम पहली दफ़ा तो दुरूद ज़रूर भेजना चाहिए, वो ज़रूरी है, वो वाजिब है। उसके बाद बार बार अगर नाम आ रहा है, जैसे आपको ऐसी क्लास में बार बार नाम आए, मुस्तहब है कि आप बार बार ये दुरूद भेजें, लेकिन अगर नहीं भी भेजते तो इट्स ओके, लेकिन पहली दफ़ा ज़रूर ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें अल्लाह ताला के साथ जोड़ा, उसकी पहचान कराई, ये दीन हमें हम तक पहुंचाया, कुरान हम तक पहुंचाया, हमारी खैर ख्वाही की। मैंने जैसे आपको बताया कि हम इस पर शुक्र अदा करें कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत सारी आसानियाँ मिल गईं जो पिछली उम्मतों के पास नहीं थी। इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं उन सारी चीज़ों में जाऊं, लेकिन बहुत सारी मिल गई, और बहुत सारे छोटे छोटे कामों पे हमें इतनी बड़ी बशारतें मिल गई। अब लैलतुल कदर आने वाली है, अब एक लैलतुल कदर की इबादत के ऊपर 1,000 महीनों की इबादत से ज़्यादा की बशारत मिल गई, ये किसी और उम्मत को थोड़ा ही मिली थी। छोटे छोटे कामों के ऊपर हमें, अभी आज भी मैं आपको एक छोटा सा ही काम बताऊंगी, अभी सलाम का भी मैंने आपको बताया कि कितनी आपको नेकियां मिल गई, इस तरह 1,000 नेकियां एक दिन में करना किसी इंसान के लिए आसान नहीं है, लेकिन इस उम्मत के लिए इतना आसान कर दिया गया, ये कलिमात कह दो तो आप अल्लाह ताला के आगे तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। उनके ऊपर बनी इसराइल को तो इनके दरवाजों पे लिखा जाता था कि ये इसकी सजा है, फलाने ये जुर्म किया, अल्लाह ताला ने तो पर्दापोशी कर दी। और भी बहुत सारे फजाइल हैं इस उम्मत के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें मिल गए, हमारी खुश नसीबी हो गई, अल्लाह ताला ने हमें इस उम्मत में पैदा कर दिया। सबसे पहले ये जन्नत में जाएगी, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलवाएंगे, सबसे पहले इस उम्मत का हिसाब किताब हो जाएगा, इस उम्मत की सफ़ें सबसे ज्यादा होंगी कयामत के दिन जन्नत में जाने वालों की। तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें बहुत सारी खैर पहुंची है, हम उनके ऊपर सलामती भेजते हैं, उनको सलाम कहते हैं। तो आप देखें लोग कहते हैं मदीना जाएं तो हमारा सलाम वहाँ पे कह देना, हालांकि आप नमाज में हर दफ़ा सलाम कहते हैं, आपको किसी के थ्रू क्या ज़रूरत है भेजने की जब आप खुद ही सलाम भेज रहे हैं। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि हम सलाम भेजते हैं, हमने आज तक नमाज को ही नहीं समझा कि नमाज में हम बोलते क्या हैं, हम कह क्या रहे हैं, बल्कि उसको तो शायद भूल जाए। आप हर नमाज में अत्तहियात के अंदर ये पढ़ते हैं अस्सलाम वालेका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातु, पूरा सलाम कहते हैं, और अल्लाह की रहमतें भी हों और बरकतें भी हों आपके ऊपर, सलामती भी रहमत भी बरकत की भी दुआ कर दी आपने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर। और उसके बाद अस्सलामु अलैना, और हमारे ऊपर भी सलामती हो, हम अपने लिए भी सलामती मांगे, लेकिन अस्सलामु अलैया नहीं है, मेरे ऊपर सलामती हो नहीं, अस्सलामु अलैना। इससे पता चलता है अल्लाह ताला चाहता है कि आप सारे ही मोमिनों के लिए सलामती मांगे, हम सबके ऊपर अल्लाह ताला सलामती भेजना। इसे ये वही कर सकता है ना जिसका दिल साफ हो, और जिसके दिल में हो कि मैं फलां से दुश्मनी, फलां से नहीं मैं बात करती, और फलां कितना बुरा, और फलां के लिए कीने, और फलां के लिए कीने, वो किसी के लिए क्या सलामती मांगेगा, वो तो कहेगा कि इनको ना ही सलामती मिले। लेकिन अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है जिसका दिल साफ हो कीने से, बुग्ज से, जिसके दिल के अंदर कोई ऐसी बुराई ना हो किसी के लिए, बल्कि वो दुआएं करने वाला हो दूसरों के लिए भी। अल्लाह हम सबको सलामती अता फरमा। और फिर वाला इबादिल्लाह सालेहीन, और ए अल्लाह सलामती दे अला इबादिल्लाह सालेहीन उन सारे बंदों पर, अल्लाह तू अब जो जो भी अल्लाह के बंदे नेक बंदे हैं उनको भी सलामती अता फरमा। अब ये कितनी बड़ी बात है और इसमें कितनी डेप्थ है कि इंसान अल्लाह के सारे नेक बंदों के लिए सलामती मांग रहा है, उनके ऊपर भी सलाम कहता है। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला को सालेहीन से, अपने नेक बंदों से किस कदर मोहब्बत है कि वो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, वो दुनिया से चाहे जा चुके हैं या इस वक्त दुनिया में किसी भी दूर दराज इलाके में चाहे रह रहे हैं, मगर जो नमाजी भी नमाज अदा कर रहा है वो उनके लिए दुआ कर रहा है कि ए अल्लाह अपने नेक बंदों पर सलामती भेजना, और अगर हम उन नेक बंदों में शामिल हो जाएं तो हमें भी ये दुआएं मिलेंगी, इसके बगैर नमाज हमारी कंप्लीट ही नहीं होती। तो लिहाजा कोई चाहे या ना चाहे, पसंद करे या ना करे, मगर उस पर लाजिम है कि वो अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआ करें, और अल्लाह ताला ने इस चीज़ को लाजिम कर दिया। और दिन में कितनी दफ़ा आप अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआएं कर रहे हैं सोचें, जब भी तशहुद में बैठते हैं, चाहे 4 रकत भी पढ़नी हो आपने, दूसरी रकत के बाद बैठ के तो ये तो ज़रूर ही मांगना है। हालांकि वो जो नेक बंदा है उसका कोई अल्लाह ताला पर एहसान नहीं, वो तो अपने लिए ही भला कर रहा है ना नेकी करके, मगर अल्लाह ताला को उसकी नेकी की वजह से उससे कितनी मोहब्बत है कि हर नमाजी के लिए लाजिम कर दिया कि तू इसके लिए दुआ कर। अब वो नेक बंदा चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे अरबी है, चाहे गैर अरबी है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे अमीर है या गरीब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बदसूरत है, खूबसूरत है, हसीन है, पता नहीं क्या है, जो भी है, इससे कोई लेना देना नहीं। जो चीज उस बंदे को कीमती बनाती है ना वो उसकी नेकी है, उसकी नेकी की वजह से वो कितने लोगों की दुआएं ले रहा है। अगर इस वक्त करोड़ों लोग दुनिया के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं तो सब बंदे अपनी नमाज में नेक लोगों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। वो नेक लोग चाहे दुनिया से चले भी गए हैं, फिर भी उनके दुआएं मिल रही हैं। और इस वक्त चाहे जिंदा किसी भी दुनिया के खत्ते में बैठे हुए, उनको दुआएं मिल रही हैं। वो ये जुबान अरबी बोलते हैं या कोई और जुबान बोलते हैं, उनको दुआएं मिल रही हैं। वो कोई आलिम फाजिल है या आम इंसान नेक इंसान है, उनको दुआएं मिल रही हैं। तो उनको किसी को पकड़ पकड़ के नहीं कहना पड़ता, जैसे हम कहते हैं भाई हमारे लिए दुआओं में जरूर हमें याद रखना, हमारे लिए जरूर दुआ करना, हमें तो कहना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं लोगों की। लेकिन अगर हम नेक बन जाए ना, तो अल्लाह ताला सबको ही हमारे लिए दुआएं करने पे लगा देता है। इसके बाद हमें कितना शौक होना चाहिए कि हम भी या अल्लाह सालेहीन की सफ में शामिल हो जाएं। अम्बिया ने दुआएं मांगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान पाक में आती है ना, रब्बी हबली हुक्म वाले हकनी बिस सालेहीन, ए अल्लाह मुझे सालेहीन के साथ मिला देना। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ तिल फातर समावाती वल अर्द अंत वली फिर दुनिया वाला खैर तो वफ्फनी मुस्लिमन, मुझे इस्लाम की हालत में फौत करना, वाले हकनी बिस सालेहीन, ए अल्लाह मुझे सालेहीन का साथ अता फरमा। सोचिए वो साले बंदा अपने घर में बैठा हुआ, हरम में कितने लोग दुआएं पढ़ रहे होते हैं, नमाजें पढ़ रहे होते हैं, नमाज जितने लोग पढ़ रहे हैं हरम में, कितनी हज भी कितने लोग होते हैं, लाखों लोग हैं। आप दुनिया में सारे छोड़ के सिर्फ हरम में देख लें, मस्जिद नबी में देख लें, अगर हम नेक हैं ना तो हम सबकी दुआओं में शामिल हो गए। इमाम काबा भी दुआएं मांग रहे हैं, उलमा भी दुआएं मांग रहे हैं, कितनी यानी नमाज के अंदर ये सब जब वो पढ़ रहे हैं तो वो दुआएं मांग रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में लोग बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, वो सब दुआएं कर रहे हैं उस बंदे के लिए जो नेक है। तो उस बंदे को सोचें फिर कितनी बरकत मिलेगी अल्लाह की तरफ से, कितना उसको दिल का सुकून मिलेगा, उसको कितनी सलामती मिलेगी हर शर से, हर शर से, हर हर किस्म की बुराई से वो कितना सलामत रहेगा, हर किस्म की मुसीबत से, और उसको कितनी रूहानियत नसीब होगी। तो नेक बन जाए, चलो इसी खातिर नेक बन जाए कि करोड़ों लोग नमाजें पढ़ें तो मैं भी उनकी दुआओं में शामिल हो जाऊं। जब मैं कब्र में चली भी जाऊं तो जमीन के ऊपर जितने लोग नमाज पढ़ते रहें वो मेरे लिए दुआएं करते रहें करते रहें। तो देखे ना, अगर इसी हालत में, नेकी की हालत में ही दुनिया से गए तो बस शामिल हो गए सबकी दुआओं में। ये कितना प्यारा रिश्ता है ना, ये खूनी रिश्ता नहीं है, ना दोस्ती का रिश्ता है, ना किसी कारोबार की वजह से, ना खानदान और बरादरी की वजह से, बल्कि ये रिश्ता ईमान और नेकी की वजह से, कि किसी को जानते नहीं भी है ना हम, फिर भी हम उसके लिए दुआएं कर रहे हैं क्योंकि वो नेक है। वो चाहे अपने घर में बैठा है या अस्पताल में पड़ा हुआ है, चाहे वो अपनी दुकान पे बैठा है या अपनी जॉब पे बैठा हुआ है, वो चाहे खुशहाल है या बदहाल है, वो चाहे जिंदा है या दुनिया से चला गया, बस दुआएं दुआएं उसके लिए, दुआएं दुआएं उसको मिल रही। सुबहान अल्लाह। और उसके बाद अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि इसमें हम फिर क्या कह रहे हैं। तो अब से हमें शौक ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए हमारा कि हम नेकियों में आगे बढ़ें, दुआएं भी होनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें अपने सालेहीन बंदों में शामिल फरमा लेना, और इन दुआओं को हम याद भी कर लें, हम अपने दुआओं में इन दुआओं को कर लें कि अलहिक़नी बिस्सालिहीन, हम सजदे में भी जाएं तो अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिस्सालिहीन ये कह दें आप, और इस चीज़ को का शौक़ भी रखें हम। और अब आपको मैंने वो जिक्र बताना है जिसका मैंने आपको बताया कि 1,000 नेकियां आप में से कोई कर सकता है हर रोज़? कौन है जो 1,000 नेकियां कर सके? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था अपने सहाबा से कि कौन है तुम में से जो एक दिन में 1,000 नेकियां कर ले? तो सहाबा ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, एक दिन में 1,000 नेकियां कौन कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 दफा तुम सुबहान अल्लाह कह दो तो तुम्हें 1,000 नेकियां मिल जाएंगी, 100 दफा सुबहान अल्लाह कहने से। तो आप भी सुबहान अल्लाह कहना तो कोई भी मुश्किल नहीं है, और ये ही नहीं, सिर्फ 100 नेकियां भी मिल जाएंगी या उससे 1,000 सॉरी 100 दफा कहने से 1,000 नेकियां मिल जाएंगी और 1,000 गुना मिटा दिए जाएंगे। तो 1,000 नेकियां फरमाया ना कि कौन कर सकता है, तो 100 टाइम्स बस सुबहान अल्लाह कहना, और 100 टाइम्स सुबहान अल्लाह कहने में कितनी देर लगेगी बताएं, और ये कोई नहीं कह सकता मुझे तो ये कलमा याद ही नहीं। कई चीज़ों पे तो हम ये कह देते ना, हमें तो याद ही नहीं होता तो हम क्या करें। सुबहान अल्लाह तो सबको कहना आता है ना, और हम अपनी नमाज में कितनी दफ़ा कह रहे हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा, शुरू में भी कहा, फिर अपनी रकू और सजदे की तस्बीहात भी इसी के साथ हैं। अल्लाह ताला को ये कलमा बहुत पसंद है जब इंसान ये कहता है या अल्लाह तू सुबहान है, तो 1,000 नेकियां लिख दी जाएंगी या 1,000 बुराइयां मिटा दी जाएंगी। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो इस तरह से अगर हम जैसे फजर के बाद का टाइम है, हमने चूंकि बैठना ही है इशराक तक, तो हम एक तस्बीह ये कर लें सुबहान अल्लाह की। और मैंने आपको कल बताया था रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद नबिया, उसकी भी उसको भी 3 दफ़ा कह दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह के वक्त ही कलिमात कहता है, मैं जमानत देता हूँ कि मैं खुद उसको हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। तो इसका माना जहन में रख के इसको कहना है, ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही कह दे। इसका माना जहन में आपके होना चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ, जो मैंने कल आपको ये सिखाया था। और इसी तरह सुबहान अल्लाह का भी अब आपको माना आता होगा कि हम क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला को किस चीज़ से पाक करार दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों का सही फहम अता फरमाए। आज हम जो दुआ कर रहे हैं वो दुआ भी हम सारी खैर उसमें मांग लेते हैं, बहुत ही प्यारी दुआ है, क्योंकि उसमें आपने सारी खैर मांग ली और सारे किस्म के शर से भी आपने अल्लाह ताला से पनाह मांग ली कि अल्लाह ताला में बचा लेना। तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरी कुल्ली, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ भलाई का, सारी की सारी भलाई, आजली ही वाजली, जल्दी मिलने वाली या देर से, चाहे दुनिया की हो चाहे आखरत की हो। मा आलिम तुम इन हो मालम आलम, जो इसका मुझे पता है और जिसका मुझे पता ही नहीं है। अब देखें, यकीन करें, हमें तो कई खैर का पता ही नहीं है कि वो भी हमारे लिए चीज़ खैर है, हमने कभी मांगी ही नहीं, हमें इल्म ही नहीं था ना, हमारा इल्म बहुत छोटा सा है ना। अल्लाह जो तुझे पता है लेकिन मुझे तो नहीं पता, लेकिन बस तू मेरे लिए लिख देना, मैं तुझसे उस सारी भलाइयों का सवाल करती हूँ। वह उजुबी का मेना शर्री कुल्ली, अल्लाह हर शर से मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में ले ले कि मुझे यानी महफूज कर ले, किससे, हर किस्म के शर से, आजली वाजली, चाहे दुनिया का है चाहे आखरत का है, यानी जल्दी मिलने वाला या देर से आने वाला। मालिम तुम इन हुआ मालम आलम, जिसका मुझे पता है और जिसका मुझे नहीं पता, क्योंकि शर भी इतने सारे हैं इस दुनिया में, कई शर हमें पता भी नहीं कि ये भी शर है, इसके अंदर कितना बड़ा शर है छुपा हुआ, हमें क्या पता। कई चीज़ें हमें खैर नजर आती हैं, उसके अंदर शर होता है, और कई चीज़ें हमें पता ही नहीं कि ये शर वाली हैं, कहीं जाना, किसी के साथ बात करना, कहीं रहना, किसी के साथ दोस्ती बढ़ानी, कहीं रिश्ता करना, किस में क्या शर है हमें क्या पता। तो अल्लाह ताला सारे ही शर से हमें बचा लेना। तो हम इतनी कि ये जामे दुआ है ना, कि आपको कोई और दुआएं नहीं भी आती हूँ, आप ये एक दुआ मांग के सारी खैर अपने लिए मांग रहे हैं, सारे किस्म के शर से पनाह मांग रहे हैं, तो फिर आप और क्या रह गया। तो इसलिए ऐसी जामे दुआओं को याद कर लें और अपने सजदों में इसको शामिल कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था सजदों में दुआ कबूल होती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा दुआएं किया करो अपने सजदों में, आप अल्लाह ताला से करीब होते हैं। तो क्या मुश्किल है हम ऐसी दुआएं याद कर लें। फिर हर वक्त लोग ये सवाल करते हैं उर्दू में कर सकते हैं कि नहीं, भाई जब आपको ये इतनी जामे दुआ मिल गई, अब उर्दू में आप लंबी लंबी दास्तानें बयान करेंगे, उससे बेहतर आप ये एक दुआ भी याद कर लेते हैं, आपकी सारी खैर आपको पहुंच गई और सारे ही शर से आप बच गए, तो और क्या चाहिए। ऐसी दुआओं को ज़रूर याद करें और ज़रूर शामिल करें अपने सजदों में, अपने सजदों को लंबा करें इस तरह से कि आपने सजदे की तस्बीह कर ली, उसके बाद आप दुआएं मांगते रहें। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक से नवाज दे, अखलाक भी अल्लाह ताला तकसीम करता है लोगों में, अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक अता फरमा, नरम जुबान अता फरमा, और अल्लाह ताला हमारी नमाजों को बेहतरीन नमाजें बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।